थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज से हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से हागै नामक पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। इसका मुख्य विषय है मंदिर का पुनर्निर्माण। हागै की पुस्तक संक्षिप्त संदेशों का एक संग्रह है जिसे परमेश्वर ने हागै भविष्यद्वक्ता के द्वारा ईस्वी पूर्व 520 में दिया था। ये संदेश लोगों के अगुओं से मंदिर के पुनर्निर्माण का आग्रह करते हैं तथा इनमें परमेश्वर भविष्य में समृद्धि और शांति देने की प्रतिज्ञा करता है जो पुनर्स्थापित और पवित्र लोगों के लिए होगी। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय परिवार और मित्रों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए एक नई पुस्तक से अध्ययन को आरंभ कर रहे हैं जो पुराने नियम की पुस्तक और उसके हग्गई नामक भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से है। मेरे मित्रों, पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे नए नियम की पत्री में से यहूदा की पत्री, और उस पत्री में हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा से इस बात को जाना कि हमें विधर्म और झूठे शिक्षकों से कैसे बचना है और अपने आप को कैसे परमेश्वर की निकटता में बनाए रखना है। इसी के साथ जब आज हम नए पुस्तक का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप बड़े ही ध्यान से इस पुस्तक का अध्ययन मेरे साथ करें ताकि यह पुस्तक हर एक के जीवन के लिए अधिक से अधिक आशीषों को जोड़ने पाए। लेकिन इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज के इस अध्ययन में हम सबकी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से एक बार दिया है ताकि हम आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन कर सकें। आज जब हम हगै नबी की पुस्तक से अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं, हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर के इस अध्ययन पर आप अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हमारे प्रिय श्रोता इस समय जो अलग अलग स्थानों पर बैठे हैं, आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, हमारी विनती है कि आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना आपकी सहायता के हम कुछ भी नहीं समझ सकते। हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें ताकि हर एक जो आपके वचन में से सुने तो आपका वचन समझने पाए, अपने जीवन में ग्रहण करने पाए। आज के इस अध्ययन पर भी हम आपकी विशेष आशीष चाहते हैं। हम विनती करते हैं हमारे उन प्रिय भाई बहनों के लिए जो निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, दबाव में हैं, बीमार अवस्था में हैं, अपने जीवन से टूट चुके हैं। पिताजी, आप उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि करें ताकि आज का वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आज हम बाइबल में से पुराने नियम की पुस्तक और उसमें छोटे भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में से हगै नबी की पुस्तक से अध्ययन को आरंभ करेंगे। हम सबसे पहले इस पुस्तक के परिचय को देखेंगे ताकि हम इस पुस्तक के अध्ययन में आगे बढ़ते हुए इसे अच्छी तरह से समझ सकें। मेरे मित्रों, हम देखेंगे कि हग्गै उन तीन भविष्यद्वक्ताओं में से एक था जो बेबीलोन की बंधुआई से लौटने वाले यहूदियों में से रहा और जो उनके बीच में सेवा कर रहे थे। हग्गै, जकर्याह और मलाकी, ये तीन भविष्यद्वक्ता हैं जो बंधुआई में लौटने वाले यहूदियों के बीच में सेवा कर रहे थे। एजरा की पुस्तक 5 अध्याय उसके 1 और 2 पद तथा 6 अध्याय उसके 14 पद में इस पुस्तक के लेखक भविष्यद्वक्ता हग्गै की चर्चा की गई है कि वह उन दो भविष्यद्वक्ताओं में से एक था जिन्होंने स्वदेश लौटने वाले यहूदियों को प्रोत्साहित किया कि उनके सामने कैसी भी कठिनाई क्यों ना आए, उन्हें मंदिर का पुनः निर्माण करना ही होगा जिसे राजा नबूकदनेस्सर ने ध्वंस कर दिया था। इस संदर्भ में और अपनी भविष्यवाणी में उसने अपने विषय जो चर्चा की है इससे 4 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली बात है, हग्गै आत्माभिमान से रहित था, वह परमेश्वर का महिमान्वन करना चाहता था। उसमें यहोना बपतिस्मा देने वाले का सा स्वभाव था जिसे हम यहोना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 30 पद में पढ़ते हैं, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। दूसरी बात हम देखते हैं, वह परमेश्वर का संदेश वाहक था, उसके संदेश की पहचान थी सेनाओं का यहोवा यों कहता है। अब तीसरी बात हम देखते हैं, वह प्रजा को झिड़कता ही नहीं था, उन्हें अति उत्तम रीति से उत्साहित करता था और प्रोत्साहन भी देता था। और चौथी बात है, वह प्रचार करता था तो उस पर चलता भी था। कहने का अर्थ है, जैसा कथनी वैसा करनी, जो कुछ वह बोलता था उसी के अनुसार वह चलता भी था। मेरे प्रियो, अपने पुस्तक के आरंभ में वह कहता है, दारा राजा के 2वें वर्ष के 6वें महीने के 1 दिन यहोवा का यह वचन हग्गै भविष्यद्वक्ता के द्वारा हिस्तास्पेस द्वारा दारा के राज्य काल का आरंभ 521 ईस्वी पूर्व में था। अतः उसके राज्य काल की 2वां वर्ष अर्थात 520 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन की बंधुआई के बाद के भविष्यद्वक्ता अपनी भविष्यवाणी का समय अन्य जातीय राजाओं के राज्यकाल के अनुसार व्यक्त करते थे। बेबीलोन की बंधुआई में जाने से पूर्व के भविष्यद्वक्ता अपने सेवाकाल को या तो इसराइल के राजा या यहूदा के राजा या दोनों ही के राजाओं के राज्यकाल के अनुसार दर्शाते थे। अब क्योंकि न तो इसराइल में कोई राजा था और न ही यहूदा में, इसलिए हग्गै अपनी भविष्यवाणी का समय निश्चित करते हुए बताता है अन्य जाति के राजा के राज्यकाल की तुलना में इससे प्रकट करता है। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 24 पद में प्रभु यीशु ने कहा था, जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। हग्गै के युग में अन्य जातियों का समय आरंभ हो चुका था, वरन जिस समय राजा नबूकदनेस्सर ने यहूदा वासियों को बंदी बनाया था उसी समय से अन्य जातियों का समय आरंभ हो गया था। उसी समय से यरूशलेम अन्य जातियों के अधीन था। इस कारण हग्गै को अन्य जाति राजा का संदर्भ देने की आवश्यकता पड़ी थी। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि उस समय इसराइल और यहूदा में कोई राजा नहीं था और यही कारण है कि हग्गै को अन्य जाति राजा का संदर्भ देना पड़ा था। मेरे मित्रों, हम देख रहे हैं कि हग्गै का सर्वोच्च मनोवेग यरूशलेम के मंदिर का पुनरुद्वार और शोधन कार्य था। उसने यहूदियों को मंदिर के पुनरुद्वार में विलंब के लिए झिड़का ही नहीं, वरन इस उत्तरदायित्व में उनकी सहायता भी की और उन्हें प्रोत्साहित भी किया। हग्गै लगातार परमेश्वर का वचन की चर्चा करता है। उसने अपनी इच्छा से स्वयं को दीन बनाया कि परमेश्वर का महिमान्वन हो। इसका संदेश व्यवहारिक था, अति सरल था। हग्गै और याकूब की पुस्तकों में समानता है। जी हाँ, दोनों ही दैनिक जीवन पर बल देते हैं। कार्य आत्मिकता में होना चाहिए। निष्क्रियता को वे दुष्टता मानते थे। उनके अनुसार जीवन का मूल्यांकन कार्यों के रूप में या कार्यों से होना है। हग्गै का समकालीन जकर्याह, जो एक अलग भविष्यद्वक्ता है, जकर्याह दर्शनों के संसार में था, परंतु हग्गै के पांव धरती पर थे। वह व्यवहारिक था। स्वप्नदर्शी और कर्मठ दोनों को एक साथ चलना चाहिए। इस पुस्तक के ऊपर पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 58 पद में लिखा जा सकता है। लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वथा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मेरे प्रियो, इस पुस्तक के दो मुख्य पद हैं। हग्गै नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी, यहोवा का यही वचन है। तथा हग्गै नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसके 14 पद में भी लिखा है, यहोवा ने शालतियेल के पुत्र जरुबाबेल को, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशु महायाजक को, और सब बचे हुए लोगों के मन को उभार कर उत्साह से भर दिया कि वे आकर अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के भवन को बनाने में लग जाएं। मेरे मित्रों, इस पुस्तक की पृष्ठभूमि को या परिचय को हम इसी रूप में देखते हैं कि हग्गै का जो मुख्य काम है, यरूशलेम के जो मंदिर ध्वस्त किए गए हैं उसको फिर से बनवाना अर्थात बनाना, क्योंकि जब राजा नबूकदनेस्सर यहूदियों को बंधुआई में ले गया तब उसने इसे नाश कर दिया, और जब लोग बंधुआई से लौट करके वापस आए हैं तो हग्गै नबी उनको उत्साहित करता है कि वे मंदिर को फिर से बनाए। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए हग्गै नबी की पुस्तक अध्याय 1 को देखें। इस पुस्तक का विषय है प्रजा को चुनौती, रुचि में भेद का दोष, अपने मार्गों को परखने की पुकार, मंदिर के निर्माण की आज्ञा, प्रजा की आज्ञाकारिता, परमेश्वर द्वारा अनुमोदन। मेरे मित्रों, 70 वर्ष की बंधुआई के बाद बेबीलोन से लौटने वाले यहूदियों में हग्गै भविष्यद्वक्ता भी था। इस भविष्यवाणी के अध्ययन में हम देखेंगे कि भविष्यवाणी की पुस्तकों के साथ साथ इतिहास की पुस्तकों को पढ़ना कैसा महत्वपूर्ण है। हग्गै, जकर्याह और मलाकी भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के साथ ऐतिहासिक पुस्तकें हैं। एज्रा, नहमिया और एस्थर की पुस्तकें, इनके साथ ही दानियल की पुस्तक को सबसे पहले पढ़ना आवश्यक है। हम देखते हैं प्रजा की चुनौती। हग्गै और जकर्याह एक ही समय भविष्यवाणी की सेवा कर रहे थे, तथापि उनकी विधि अलग अलग थी। दोनों ही ने स्वदेश लौटने वाले इसराइलियों को मंदिर के पुनः निर्माण के लिए तथा शहर पनाह के पुनरुद्वार की चुनौती दी और प्रोत्साहित भी किया। एज्रा 5 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, तब हग्गे नामक नबी और इद्दो का पोता जकरिया यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगे। उन्होंने इसराइल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबूवत की। तब शालतियल का पुत्र जरुबाबेल और योसादाक का पुत्र यहोशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है बनाने लगे और परमेश्वर के वे नबी उनका साथ देते रहे। अतः आप देख सकते हैं कि एज्रा की ऐतिहासिक पुस्तक में हगै और जकर्याह दोनों ही का नाम है। उन्होंने प्रजा को मंदिर के पुनः निर्माण के लिए प्रेरित किया और उनके साथ काम भी किया। और एज्रा की पुस्तक 6 अध्याय उसके 14 पद में हम पढ़ते हैं, तब यहूदी पुर्निये हगै नबी और इद्दो के पोते जकर्याह के नबूवत करने से मंदिर को बनाते रहे और सफल भी हुए। उन्होंने इसराइल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और फारस के राजा कुस्रो दारा और अर्थशत्र की आज्ञाओं के अनुसार बनाते बनाते उसे पूरा कर दिया। मेरे प्रियो, उन्होंने इस कार्य को पूरा किया है जिसका प्रमाण हमें एज्रा नबी की पुस्तक 6 अध्याय के 14 पद को पढ़ने से मिलता है। आगे हम देखेंगे रुचियों में परस्पर भेद। आइए आप मेरे साथ हगै नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ें। हगै 1 अध्याय 1 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहवा का यह वचन हगै भविष्यद्वक्ता के द्वारा शालतियल के पुत्र जरुबाबेल के पास जो यहूदा का अधिपति था और यहोसादाक के पुत्र यहोशु महायाजक के पास पहुंचा। लिखा है, दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन। यह उसके सेवा काल का समय था। यहूदी कैलेंडर के अनुसार यह सितंबर 1520 ईस्वी पूर्व है। हगै अन्य जातियों के समय में यह पुस्तक लिख रहा था, अतः उसका समय भी अन्य जातियों के समयानुसार दर्शाया जाना स्वाभाविक ही था। जैसा हम देख चुके हैं कि यहूदा और इसराइल में तो अब कोई राजा था ही नहीं, इसलिए अपने राजाओं का नाम वे नहीं दे सकते थे और उस समय अन्य जातियों के राजा थे। अन्य जातियों का यह समय बेबीलोन द्वारा इसराइल की बंधुआई से आरंभ हुआ था और यह आज भी पाया जाता है। लुकार्ची सुसमाचार 21 अध्याय के 24 पद में प्रभु यीशु के वचन है, वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। मेरे प्रियो, आगे हम देखते हैं, लिखा है, यहोवा का यह वचन हगै भविष्यद्वक्ता के द्वारा यहोशु महायाजक के पास पहुंचा। हम इस संपूर्ण पुस्तक में देखते हैं कि हगै परमेश्वर का वचन उक्ति का बार बार उपयोग करता है जिसके द्वारा वह स्पष्ट करता है कि जो वह कह रहा है वह उसके अपने नहीं परंतु परमेश्वर के वचन है। आगे लिखा है, शालतियल के पुत्र जरुबाबेल के पास जो यहूदा का अधिपति था पहुंचा। जरुबाबेल का अर्थ है बेबीलोन में जन्मा। यह एक अन्य जाति नाम है। वह दाऊद का वंशज था, यहोयाकीन का पोता। इसे हम देख सकते हैं पहला इतिहास की पत्री 3 अध्याय उसके 16 से 19 पद में। उसे कुस्रू ने यहूदा का अधिपति अर्थात राज्यपाल ठहराया था। आगे लिखा है कि यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक। इसे हम पहला इतिहास की पुस्तक 6 अध्याय उसके 15 पद के अनुसार पाते हैं कि वह बेबीलोन के आक्रमण के समय यहूदा में महायाजक था। वह एक धर्मगुरु था। अतः हम देखते हैं कि परमेश्वर अपना वचन सबसे पहले धर्म और नागरिक अगुओं को पहुंचा रहा है। बेबीलोन से स्वदेश लौटने वाले इसराइलियों में प्रत्याशा धर्म सीमा पर थी और पुनः निर्माण का उनका जोश ऊंचाइयों पर था, परंतु उनके सामने बड़ी बड़ी बाधाएं थी जिनको पार करना अत्यधिक कठिन कार्य था, जिसमें बहुत परिश्रम की आवश्यकता थी। अतः मंदिर के पुनः निर्माण कार्य में वे निरुत्साह होने लगे थे। अतः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि मंदिर के पुनः निर्माण का समय अभी नहीं आया है। उन्होंने पूर्व स्थिति में ही रहना अपने आप को उचित समझा। उनका कहना था यह काम अत्यधिक कठिन है और हमारे विचार में परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम इस काम को करें। उन्होंने मंदिर की नींव तो डाल दी थी, परंतु सामरियों के घोर विरोध के कारण उन्होंने काम करना छोड़ दिया और कहने लगे कि अभी इसका समय नहीं आया है। मेरे मित्रों, यहां पर हम पहली बार देख रहे हैं सामरियों। ये वे लोग हैं जो इसराइली हैं और इसराइलियों को असुरों ने अपने बंधुआई में ले लिया और इसराइली अर्थात यहूदी, उत्तरी राज के यहूदी और असुर एक दूसरे से विवाह किए और उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुए उन्हें सामरी कहा गया। और यही कारण है कि यहूदा के यहूदी उनसे घृणा करते थे क्योंकि वे अशुद्ध हो गए थे। मेरे मित्र, यहां पर हम देख रहे हैं कि ये सामरी लोग ही अपने ही लोगों का विरोध कर रहे थे कि वे मंदिर को ना बना सकें, शहर पनाह को ना बना सकें। आज भी हमारे जीवन में या हमारी कलीसियाओं में जब हम कार्य करते हैं, उचित कार्यों को करना आरंभ करते हैं, तो विरोध बाहर से नहीं परंतु भीतर ही से होते हैं और अपने ही लोगों से होते हैं। और यही कारण है कि हम प्रभु के लिए भवन या उसके लिए कार्य नहीं कर पाते हैं। मेरे मित्रों, इस पुस्तक के इस आरंभ में ही हम इस बात को देख रहे हैं कि यहूदी जो बंधुआई से वापस लौट करके आए हैं, उनके अंदर में एक जोश है, एक लगन है कि वे मंदिर को पुनः बनाएं और उसके शहर पनाह को ठीक करें। परंतु उनके बीच में कड़ी चुनौती है, कठिन मेहनत है, फिर भी वे इस कार्य को करना चाहते थे। परंतु हम देखते हैं कि फिर वे अपने आप में कहने लगे कि यह समय परमेश्वर के भवन बनाने का नहीं है और वे पहले के जैसा अपना जीवन जीने लगे। परंतु हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार वे परमेश्वर के दास के द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं और तब वे परमेश्वर के लिए कार्य को करना आरंभ करते हैं। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस परिचय के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में हगै की पुस्तक के बारे में जाना है। अगले अध्ययन के द्वारा हम और भी बातों को सीखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर के लोगों ने इस मंदिर को बनाया और अपने जीवन में उन महान आशीषों को प्राप्त किया। कृपया आप अगले अध्ययन में अवश्य ही शामिल हों ताकि हम एक साथ फिर से इस पुस्तक का अध्ययन कर सकें। प्रभु आज के अध्ययन के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
झुकते हैं प्रणाम करके आए हैं हम भजने 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 आए हैं पिताजी आत्म सच्चाई से तुझको। पापियों का मित्र तू है, पाप को तू मिटाने आया। पापियों का मित्र तू है, पाप को तू मिटाने आया। तू है सच्चा मुक्तिदाता, आए हैं हम भजने 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 आए हैं पिताजी आत्म सच्चाई से तुझको। भजने आए हैं पिताजी आत्म सच्चाई से तुझको। झुकते हैं प्रणाम करके आए हैं हम भजने 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 आए हैं पिताजी आत्म सच्चाई से तुझको। रख निहार।